हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जोया ने कहा, भाई अब हम न्यू जगह पर हैं और आपने देखा इस अपार्टमेंट का पार्क कितना खूबसूरत है। हम बिल्डिंग के लोगों से बात करके पार्क में हल्दी, मेहंदी और शादी का फंक्शन कर सकते हैं और यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है, तो हम लोग अपार्टमेंट में से कुछ लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। जोया की बात सुनकर अकरम सोच में पड़ गया, क्योंकि जोया हर लिहाज से सही कह रही थी। ऐसा तो हो सकता था और रिया का मन भी रह जाएगा, और वैसे भी यहाँ की सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा टाइट है, कोई गैर आदमी यहाँ आ ही नहीं सकता था। अकरम रिया की बात सुनकर काफी खुश हो गया और बोला, वाकई ये बहुत अच्छा आइडिया है, अगर ऐसा है तो मैं आज ही बिल्डिंग के हेड से बात कर लेता हूँ। जोया और रिया दोनों खुश हो गईं और दोनों खुश होकर अकरम के गले लग गईं। अब आगे, और अकरम उसी वक्त हाउसिंग सोसाइटी के पास पहुंच गया और अपनी शादी की बात सामने रखी, तो वो लोग काफी खुश हो गए थे। उनमें से एक ने बोला था, आई लव इंडियन मैरिज रिचुअल्स, और बोला, हम भी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, सो आप अपने फंक्शन कर सकते हैं और हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। अकरम बेहद खुश हो गया था, उसने तो सोचा था काफी मनाना पड़ेगा इन हाउसिंग सोसाइटी वाले लोगों को, लेकिन ये तो मानो वेट ही कर रहे थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कुछ लोगों को अकरम से मिलवाया जो सोसाइटी का छोटा मोटा काम किया करते थे, और बोले, ये आप लोगों की मदद करेंगे, जिस भी चीज की जरूरत हो ये आप तक पहुंचा देंगे। वो लोग शायद किसी पार्टी ला वेट ही कर रहे थे कि उन्हें ऐसा कुछ इन्हें मिले जिसमें ये लोग इंजॉय कर सकें। अकरम उन लोगों से सारी बात करने के बाद खुशी खुशी अपने फ्लैट में चला गया और वहाँ जाकर उसने खुशी खुशी जोया और रिया को सारी खबर दी। रिया खुश होकर जोया से लिपट गई और जोया ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, देखना भाई, हम लोग अब सारे फंक्शन धूमधाम से करेंगे और सारे फंक्शन की सजावट, हर एक तैयारी मैं खुद करूँगी। अकरम, नहीं जोया, तुम कुछ नहीं करोगी, तुम केवल आराम करो, लगता है तुम भूल जाती हो, तुम अकेली नहीं हो, एक नन्हा मेहमान तुम्हारी कोख में है जिसे अभी आराम की सख्त जरूरत है। तब जोया ने कहा, आओ फिक्र ना करें भाई, आपने बताया तो है कि हाउसिंग सोसाइटी वालों ने आपको कुछ लोगों से मिलवाया है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अपने अकॉर्डिंग तो उन लोगों से काम करा सकती हूँ ना, जोया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तब अकरम, ठीक है बाबा, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर लेना, ओके, बस अपना ध्यान रखना। ओके भाई, मैं आज से ही तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अभी मॉर्निंग की शुरुआत है तो जोया के पास पूरा दिन था तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज रात को ही हल्दी का फंक्शन था। जोया ने रिया को देखा और उसके पास गई। रिया काफी ज्यादा शर्मा रही थी, उसके गाल एकदम लाल हो चुके थे। जोया गई और धीरे से उसके कान में बोली, खुश हो ना तुम। रिया बिना कुछ बोले जोया के गले लग गई और अकरम रिया के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, अब तो ठीक है ना सब। जोया ने उनके बीच हड्डी नहीं बनना चाहती थी और वो अकरम से सोसाइटी में काम करने वालों लोगों का नंबर लेकर पार्क में जाने के लिए निकल गई थी। वहीं अकरम ने रिया से कहा, अब तो सब वही हो रहा है जो तुम चाहती थी, अब मेरा इनाम तो दे दो। ऐसा कहकर अकरम ने रिया के होठों पर अपने होठ रख दिए और दोनों एक दूसरे में खो गए। वहीं अरमान को जब से पता चला था कि जोया अमेरिका में है, तब से उसने अपना काम खत्म करना शुरू कर दिया था। वो सारा काम खत्म करके जल्द से जल्द अमेरिका चले जाना चाहता था। उसे आज अपने भाई की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी, क्योंकि अगर अरहम आज ठीक होता तो वो उसका सारा काम संभाल लेता, लेकिन अफसोस, वो तो अब किसी और का मोहताज था। अरमान एक शाम अरहम के पास गया और बोला, हो सके तो मुझे माफ कर देना भाई, लेकिन मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से तेरी ये हालत हुई है उसका पता चल गया है, मेरे आदमियों ने पता लगाया है कि वो अमेरिका में है। अरहम ने जैसे ही जोया के मिलने की खबर सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरहम के बहते आंसुओं को देख अरमान एक रुमाल से उन्हें साफ करने लगा और बोला, बस कुछ दिन और मेरे भाई, एक बार वो लड़की हाथ आ जाए फिर देखना तुम में कैसे उसे तेरे साथ जो हुआ उसकी सजा देता हूँ। अरमान अभी भी जोया को की कसूरवार समझ रहा था। उसे लगता था अरहम की इस हालत की जिम्मेदार कहीं न कहीं जोया ही थी, उसे अपनी गलती तो कभी नजर ही नहीं आई थी। उसकी नज़र में अगर कहीं कुछ भी गलत होता था वो केवल कोई ना कोई औरत ही कर सकती थी, और जोया के उसकी ज़िंदगी में आने से पहले अगर वो किसी औरत को ब्लेम करता था तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ थी। जी हाँ, उसकी माँ, जिसने उसे और उसकी बहन और भाई को जन्म दिया था। अरमान को बचपन से ही औरतों से नफरत हो गई थी, वो भी अपनी माँ की वजह से, और केवल यही रीज़न था कि वो मेहर को मोहब्बत करता था। क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद अगर किसी ने माँ का फर्ज निभाया था तो वो और कोई नहीं बल्कि मेहर थी। अरमान अपने कमरे में चला गया था और अपनी आंखें बंद करके अपने अतीत में खो गया था। अशरफ अली, अरमान के पिता ने पूरी अपनी जिंदगी हवेली में ही बिता दी थी और अपनी बीवी को बच्चों के समेत उसने शहर में छोड़ रखा था। वो केवल महीने दो महीने में ही उनसे मिलने के लिए जाता था। अरमान की माँ एक खूबसूरत औरत थी जिसकी कुछ जरूरतें थी जिसे अशरफ कभी पूरा नहीं कर पाया था और इससे हर पल अरमान की माँ तन्हा और उदास रहने लगी थी। फिर एक दिन जब वो अपने तीनों बच्चों को लेके स्कूल से घर लौट रही थी तब वो एक बड़ी सी गाड़ी से टकरा कर बेहोश हो चुकी थी और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक बहुत नर्म बेड पर पाया था। वो एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कमरा था। अरमान की माँ जल्दी से वहाँ से उठी थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। उसने बाहर देखा तो उसके तीनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए आइसक्रीम खा रहे थे। अरमान की माँ जल्दी से अपने बच्चों के पास गई और बोली, तुम लोग ठीक तो हो ना? तब मेहर ने कहा, माँ हम लोग ठीक हैं, आप बेहोश हो गई थी और हमें अच्छे वाले अंकल यहाँ ले आए थे। उसकी माँ ने चौंक कर पूछा, कौन अंकल? तभी एक 40-45 साल का आदमी वहाँ आ गया था। वो दिखने में काफी डैशिंग लग रहा था। उसने कहा, मेरी वजह से आपको चोट आई थी तो मैं आप लोगों को यहाँ ले आया, अब कैसी तबीयत है आपकी? उसने बड़े ही प्यार से उससे पूछा था। उसकी माँ उसकी शहद जैसी बोली में खोसी गई थी और वो उसे देखने लगी थी और शायद वो आदमी भी अकेला था और अपनी और इतनी खूबसूरत औरत को देखता देख उसकी आंखों में क्या चल रहा था वो भी अच्छे से समझ चुका था। उस आदमी ने अपनी बड़ी सी गाड़ी में अरमान की माँ को उसके बच्चों समेत घर छोड़ दिया था, लेकिन असल में तो वो उन्हें घर छोड़ने के बहाने उनका घर देखने आया था। और जब भी तीनों बच्चे स्कूल चले जाते वो उनके घर आने लगा और फिर धीरे धीरे उन दोनों में मुलाकात होने लगी थी और कुछ ही समय में उनकी मुलाकातों ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी और वो दोनों तन और मन से कब के एक हो चुके थे। जब भी वो लोग अकेले होते वो एक दूसरे की तन्हाई और जरूरतें पूरी करने लग जाते थे।
और फिर जब एक दिन अरमान तबीयत खराब होने की वजह से स्कूल से घर जल्दी लौट आया था तो उसने अपनी माँ को उस आदमी के साथ बिस्तर में देख लिया था। वो आदमी उसकी माँ को अपनी जुबान से चाट रहा था। अरमान का खून खौल उठा था। अपनी माँ को उस आदमी के साथ नग्न अवस्था में देखकर अरमान सोचने समझने की अपनी शक्ति खो बैठा था और उसने एक लोहे की रॉड उस आदमी के सर पर दे मारी थी जिससे उस आदमी का काफी सारा खून बह निकला था। अरमान का ये रिएक्शन उसकी माँ को कुछ खास पसंद नहीं आया था और उसकी माँ ने लगातार अरमान के गालों पर चांटों की बरसात कर दी थी और अरमान को एक कमरे में बंद करके वो उस आदमी को अस्पताल ले गई थी। और शायद वो दिन अरमान का अपनी माँ के साथ आखिरी दिन था, क्योंकि जब उसकी माँ उस आदमी को लेकर गई थी और उस दिन के बाद से वो कभी लौट कर नहीं आई थी। अपनी माँ को याद करते ही अरमान की आंखों के किनारे भीग चुके थे। अरमान की औरतों में नफ़रत की शुरुआत उसकी माँ की वजह से हुई थी। वो बहुत नफ़रत करता था अपनी माँ से और अब जब से ज़ोया उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से वो ज़ोया को हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराता था। पहले अपनी बहन के साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए और फिर आज अरहम की हालत के लिए, जबकि वो खुद नहीं जानता था कि ज़ोया उसकी नफ़रत नहीं है, ज़ोया उसकी मोहब्बत है जिसे वो कभी मानने के लिए ही तैयार नहीं था। अरमान तो कब का उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका था, लेकिन उसने तो जैसे कसम खा रखी थी कि कभी भी प्यार और मोहब्बत को वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ख़ास जगह नहीं देगा। और अपने आप को गलतफहमी में रखने के लिए ही अरमान ने ज़ोया की कुछ रातों का सौदा राजवीर के साथ कर दिया था, ताकि वो सबको ये दिखाता रहे कि वो आज भी ज़ोया से सिर्फ और सिर्फ नफ़रत करता है। अरहम, जो कि अब पूरी तरह से लाचार था, जब से उसने ज़ोया के मिलने की खबर सुनी थी तब से उसके शरीर के अंगों ने काम करना शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे अपना हाथ पैर चलाने की कोशिश करने लगा था। वो तो जब से बीमार हुआ था पछतावे की आग में जल रहा था। जो भी कुछ नाइंसाफ़ी उसने लोगों के साथ की थी वो एक एक करके हर रोज़ उसे याद आती थी और अब केवल ज़ोया से माफ़ी मांगना ही उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। और जब से उसने ज़ोया के बारे में पता चलने की खबर सुनी थी तब से उसके कानों में केवल अरमान की कही हुई एक ही बात घूम रही थी कि ज़ोया का पता चल गया है और अब शायद अरहम के जागने का वक्त आ गया था। और आखिरकार अरहम तौबा करके थक गया था और अब शायद अरहम के जागने का वक्त आ गया था। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करना ना भूलें प्लीज़।